प्रथम संस्करण की प्रस्तावना। बात सन 1954 के अगस्त की है। इंग्लैंड से स्वदेश लौटते समय जब मैं प्रोफेसर जे आर फर्च लंदन विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के विभाग के यशस्वी अध्यक्ष से अंतिम बार मिला तो उन्होंने भाषा विज्ञान के विविध पक्षों पर हिंदी में पुस्तक लिखने का स्निग्ध आग्रह किया। उनका आग्रह एक प्रकार से आदेश था। भाषा विज्ञान संबंधी विचार विमर्श के प्रसंग में जब कभी मैं पाश्चात्य विचारों के समानांतर भारतीय विचारों को रखता तो वे उनकी सूक्ष्मता एवं गंभीरता से आह्लादित हो उठते और प्रायः इस बात पर आक्रोश व्यक्त करती कि भारत से भाषा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थी उन विचारों से परिचित नहीं होते। इंग्लैंड या फ्रांस के अन्य विद्वानों के साथ भी मुझे अनेक बार विचार विमर्श करने का अवसर मिला और मैंने सदा उन्हें भारतीय भाषा वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रभावित किया। उन विद्वानों ने विशेषतः उल्लेख है लंदन विश्वविद्यालय के रूसी भाषा और साहित्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डब्ल्यू के मैथ्यूज। प्रोफेसर मैथ्यूज का अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, लातिन और एस्तोनी भाषाओं पर तो समान अधिकार था ही, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण है। रूसी भाषा के अध्ययन के सिलसिले में मैं सहज ही उनका स्नेह भाजन बन गया था। उनकी इच्छा थी कि मैं रूसी और संस्कृत व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करूं। रूसी, हिंदी या संस्कृत की भाषिक समस्याओं पर हम घंटों विचार विनिमय करते। मेरे विचार को समाविष्ट करते हुए उन्होंने हिंदी की ध्वनि प्रक्रिया पर एक लेख लिखा जो पेरिस से प्रकाशित होने वाली ल मेत्र फोनेटिक नामक प्रसिद्ध पत्रिका में 1954 में प्रकाशित हुआ था। उनकी उदारता एवं गुणग्राहिता ऐसी थी कि लेख का प्रारंभ ही उन्होंने मेरी चर्चा से किया था। इन दोनों विद्वानों के जो अब इस लोक में नहीं है, स्नेह, सद्भाव और सौजन्य को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं प्रोफेसर फर्ज से प्रतिश्रुत हुआ था कि भाषा विज्ञान पर लिखूंगा, किंतु दुर्योग ऐसा रहा और परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल रही कि चाहता चाहता भी अपना वचन पूरा न कर सका। यहाँ प्रत्योहों की चर्चा अनावश्यक है, पर दुर्योग और सुयोग में इतना अंतर है कि जो काम विगत 12 वर्षों में नहीं हो सका वह 2 महीने में हो गया। इस पुस्तक का लेखन और मुद्रण साथ साथ हुआ है। यह इसलिए संभव हो सका है कि पूरी पुस्तक बोलकर आंसू लिपि में लिखाई गई है, अन्यथा अपनी लेखनी से 2 वर्ष में भी इसे पूरा कर पाता इसमें संदेह है। इस पुस्तक के लिखने में प्रोफेसर फर्च के आदेश, कल्प, आग्रह तथा मित्रों और आत्मियों के अनुरोध के अतिरिक्त 2 और प्रेरक तत्व रहे हैं। एक तो भाषा विज्ञान को प्रांजल एवं अक्लिष्ट रूप में प्रस्तुत करना, दूसरे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को यथासंभव उभार कर रखना। भाषा विज्ञान सामान्यतः दुरूह और नीरस विषय माना जाता है। मेरे छात्रों की धारणा इसके विपरीत है। उनकी दृष्टि में भाषा विज्ञान सरल ही नहीं, सरस भी है। वस्तुतः कठिनाई विषय में नहीं, उसके उपस्थापन में रहती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है, आगम से, स्वाध्याय से, प्रवचन से और व्यवहार से। मैं समझता हूँ कि 40 वर्षों से आगम और स्वाध्याय का तथा 25 वर्षों से प्रवचन और व्यवहार का क्रम अव्याहत रखने के बाद मेरा भाषा विज्ञान पर लिखना अनाधिकार चेष्टा नहीं है। इस पुस्तक के लिखने का दूसरा उद्देश्य है भारत की उपलब्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनकी दृष्टि आधुनिकता से आविल और हीन भावना से ग्रस्त है। ये लोग बिना विदेशी चश्मे के अपनी चीजों का भी रंग रूप नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के लिए मैंने यत्र तत्र विदेशी चश्मे भी रख दिए हैं जिनकी सहायता से अपनी चीज़ें ठीक से दिखाई पड़ सकें। मैंने भारतीय विचारों का संगीत भर किया है, बोझिल होने के भय से अधिक विस्तार नहीं होने दिया, पर वह संकेत भी अब तक किसी ने नहीं किया था। भविष्य में विस्तार की भी इच्छा है। मेरे विषय में प्रचलित धारणा है कि मैंने काव्य शास्त्र का थोड़ा बहुत अनुशीलन किया है। स्वभावतः भाषा विज्ञान पर मेरा कुछ लिखना संभव है किसी को असंगत लगे, अतः वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण कर दूं। पूज्य पृथ्वीचरणों के सानिध्य के फलस्वरूप बचपन में ही पाणिनीय व्याकरण से परिचय हो गया, जिसने आगे चलकर भाषा विज्ञान की आधारशिला का कार्य किया। बोध विकसित होने पर महाभाष्य, वाक्यपदी, मंजूषा आदि ग्रंथों को भी देखने समझने का अवसर मिला। किसी न किसी व्यास से संस्कृत के साथ प्राकृत, पाली और अभ्रंश का अध्ययन भी करना पड़ा। बाद में हिंदी, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार भाषा विज्ञान के लिए जो भाषिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए वह बन गई। पितृचरणों के प्रसाद स्वरूप व्याकरण के अतिरिक्त दर्शन और काव्यशास्त्र का ज्ञान भी अनायास अधिगत हो गया, जिससे दृष्टि से में विशदता आई और शास्त्रों के उपकार्योपकार अभाव का बोध हुआ। व्याकरण, दर्शन और काव्यशास्त्र के प्रति जो रुचि शैशव में जगी वह संस्कार में परिणित होकर जीवन का अभिन्न अंग हो गई है। सच तो यह है कि भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा विज्ञान का निरूप्य है भाषा का निर्माण पक्ष और काव्यशास्त्र का निरूप्य है भाषा का अलंकार पक्ष। बिना एक के ज्ञान के दूसरे का ज्ञान अधूरा रह जाता है। ग्रे ने ठीक ही कहा था कि सच्चे साहित्य और सच्चे भाषा विज्ञान में कोई विरोध नहीं है। वास्तविक भाषा विज्ञानी कम से कम आधा साहित्यिक होता है और वास्तविक साहित्यिक कम से कम आधा भाषा विज्ञानी। विदेश जाने पर भाषा विज्ञान की पाश्चात्य और आधुनिक पद्धतियों के अनुशीलन का अवसर मिला, जिसका श्रेय बिहार के सुधी शिक्षा सचिव श्री जगदीश चंद्र माथुर ICS को है। माथुर साहब ने मेरे विदेश गमन की बाधाओं को ही दूर नहीं किया, बल्कि भाषा विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था भी की। बिहार सरकार ने मुझे विदेश भेजा था आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के अध्ययन की योजना में, किंतु भाषा विज्ञान के अध्ययन की सुविधा जुटाई माथुर साहब ने ही। यहाँ औपचारिक आभार प्रदर्शन मात्र के से माथुर साहब के स्नेह और सहाय का प्रतिपादन नहीं हो सकता। कांता समित्तयो यो पदेश युजे, पढ़ा पढ़ाया तो है सैकड़ों बार, पर उसकी व्यावहारिक सार्थकता का अनुभव जितना इस पुस्तक के प्रणयन के प्रसंग में हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। अर्धांगिनी कुसुम शर्मा के बार बार के स्निग्ध आग्रह से ही मेरा ज्ञान आकार ग्रहण कर सका, पर वह तो नींव की ईंट है जो कभी दृष्टिपथ में नहीं उतरती। पुस्तक की पूर्ण टंकित प्रति को आरंभ से अंत तक ध्यान से पढ़कर मेरे प्रिय एवं विद्वान छात्र डॉक्टर राम तवक्या शर्मा MA डिलीट ने कतिपय सुझाव दिए और टंकण संबंधी भूले दूर करने में सहायता की। उन्हें मेरे सच्चा आशीर्वाद। राधा कृष्ण प्रकाशन के संचालक श्री ओम प्रकाश ने जिस सुरुचि और तत्परता से पुस्तक को प्रकाशित किया उसके लिए धन्यवाद। इस पुस्तक के प्रणयन में मेरी एक दूसरी पुस्तक राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान का भी हाथ है, जिससे मैंने हिंदी की समस्याओं पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। वह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि कुछ ही महीनों में उसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया और उसे पढ़ने वालों में से अनेक ने भाषा विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर लिखने का जोरदार आग्रह किया। सर्वम ब्रह्ममयम जगतम की भावना से प्रेरित होकर उस अचेतन निमित्त को भी इस अवसर पर स्मरण करना उचित है। प्रस्तुत पुस्तक के तीन खंड हैं, भाषा, भाषा विज्ञान और लिपि। जैसा नाम से स्पष्ट है यह भाषा विज्ञान की भूमिका है, अतः अनपेक्षित विस्तार और जटिलता से बचकर भाषा विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों को बोधगम्य रूप में उपस्थित करना ही उनका उद्देश्य है। विषय में प्रवेश हो जाने पर ही सूक्ष्म और गंभीर बातों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आशा है यह भूमिका उस जिज्ञासा की भूमिका तैयार करने में समर्थ होगी। देवेंद्रनाथ शर्मा, देवकुसुम, पथचार, राजेंद्र नगर, पटना।